भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति अनु भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार षडांग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार रूप रघुनाथ पदे दुई पाद धरी
रूप सनातना पदे दंते त्रिण कोरी
रूप सनातन पदे दंते
सनातन पदे दंते त्रिण कोरी
भकति विनोद पड़े दुई पाद धरी
भकति विनोद पड़े दुहु पाद
कांदी
आमी तो
धामिया बोले आमी तो धाम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे
राम कृष्ण श्रोतर सत श्री श्रीमंद की श्री चैतन्य चरितामृतम की निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय जय जय नित्यानंद जय द्वैत जय जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 16। सेई गोविंद भजी आमी तेह मोर पति ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति सेई गोविंद भजी आमी तेह मोर पति ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति सेई गोविंद भजी आमी তেহ মোর পতি। তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি,
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি। তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি,
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি। তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি,
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি।
গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি,
তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি,
প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি। মাতাজি শব্দার্থ সেই গোবিন্দ, ওহি ভগবান গোবিন্দ, ভজি আমি মে ভজন করতা হুঁ, মে পূজা করতা হুঁ, তেহ মোর ওয়ে মেরে পতি মেরে স্বামী, তাহার প্রসাদে উনকি কৃপা সে মোর হয় মেরা হোতা হয় সৃষ্টি শক্তি, সৃষ্টি করনে কি শক্তি। অনুবাদ এবং তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ জি কে দ্বারা অনুবাদ। মে ভগবান গোবিন্দ কি পূজা করতা হুঁ, ওহি মেরে স্বামী হে, কেবল উনি কি কৃপা সে মুঝমে ব্রহ্মাণ্ড কা সৃজন করনে কি শক্তি হে। তাৎপর্য যদ্যপি সূর্য অন্য গ্রহ সে বহু দূর স্থিত হে, কিন্তু উসকি কিরণে উন সব কো আভরণ পোষণ করতি হে। নিঃসন্দেহ সূর্য সমুচ্চে ব্রহ্মাণ্ড কে উপর আপনি উষ্মা তথা প্রকাশ বিতরণ করতা হে। ইসি প্রকার পরম সূর্য রূপী গোবিন্দ আপনি বিভিন্ন শক্তিও কে রূপ মে আপনি উষ্মা তথা প্রকাশ কা বিস্তার করতে হে। সূর্য কি উষ্মা তথা উসকা প্রকাশ সূর্য সে অভিন্ন হতে হে। इसी प्रकार गोविंद की असीमित शक्तियां स्वयं गोविंद में अभिन्न है। अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी गोविंद है। भगवद गीता में 14:27 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आश्रित है। परम ज्ञान की यही वास्तविक धारणा है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया চক্ষুরুন্মীলিতম জেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টম স্থাপিতং জেন ভূতলে স্বয়ং রূপকদামহম দদাতি স্বপদান্তিকম। বন্দে অহম শ্রীগুরৌ শ্রীযুতপদকমলম শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপম সাগ্রজাতম সহগণম রঘুনাথম নিতম তম সজীবম সাদ্বৈতম সাবধূতং পরিজনসহিতম কৃষ্ণচৈতন্যদেবম श्री श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखानितं सह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से गोविंद भजियामी तेहो अमार प्रति तहारे कृपार है अमार सृष्टि शक्ति। ये उक्ति हमारे सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी कहे। ब्रह्मा जी ये पद कहते हैं कि मैं उन श्री गोविंद की भजना करता हूं जो मेरे पति हैं, उनके मैं पूछता हूं। क्यों तुम्हारा पति है? तुम्हारा बाप भी तो है ना? है, क्योंकि उनके कृपा से जो मैं सृष्टि करता हूं, ये सृष्टिकर्ता का सृजन शक्ति उनके कृपा से मुझे मिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी ऐसा कह करके भगवान गोविंद के महानता हमको बताते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के द्वितीय अध्याय में श्री कविराज गोस्वामी ने अपने मंगलाचरण की व्याख्या किए हैं। मंगलाचरण हम जानते तीन प्रकार के होता है। एक होता है नमस्कार, फिर वस्तु निर्देश, फिर आशीर्वाद। यही तीन प्रकार के मंगलाचरण होता है। तो यहां उन्होंने नमस्कार कर चुके हैं, अब दूसरे अध्याय में ये वस्तु निर्देश करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत का विषय वस्तु क्या है, ये भगवत तत्व निरूपण किया जाता है। इस पूरे विषय वस्तु ही है वस्तु निर्देश। तो इसी में ये वस्तु निर्देश में श्लोक के अनुवाद ये करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, क्योंकि सारे दुनिया के लोग जो बड़े बड़े ज्ञानी उपनिषद आदि पाठ करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ही सर्वोपरि है, सब ब्रह्म के सर्वव्यापी ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म सब कुछ कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति। तो उसी को यहां समझाते हैं हमको को जो ब्रह्म ब्रह्म सब करते हैं, वो ब्रह्म हमारे भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति है, उनके शरीर से निकला हुआ एक ज्योति है। सारे शास्त्र में भगवान के तीन प्रकाश बताया गया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है उनके बाह्य प्रकाश और लोकलाइज्ड जो है वो परमात्मा, उसके ऊपर थोड़े हैं स्थित हैं, और कंप्लीट जो उनका स्वरूप है वो है भगवान। लेकिन कुछ आध्यात्मवादी वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, तो कहा जाता है हाँ ब्रह्म ठीक है, ब्रह्म को मानो को मना नहीं करते, लेकिन ब्रह्म आया कहां से? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहे कि ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं, मेरे से ही ब्रह्म निकला है। तो इसी बात को हम क्या कहें, स्वयं ब्रह्मा क्या कहते हैं, इसी बात को कविराज गोस्वामी बताते हैं। बोलते हम क्या कहेंगे, हम सभी तो उनके प्रोडक्शन है, परमेष्ठी सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा की, वो चतुर्मुख चार वेद के ज्ञाता, और ऐसे तैसे नहीं कि यहां से कोई हॉस्पिटल से पैदा होकर के आए नर्सिंग होम में, वो सीधा भगवान गर्भदक्षा विष्णु के नाभि कमल से पद्मजोनी स्वयं ब्रह्मा है। और उनको तभी जो प्रथम जीव है, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सर्वप्रथम प्राणी है इस सृष्टि में। ऐसा नहीं कि और भी प्राणी नहीं थे, और भी बहुत सारे थे, पहले सृष्टि के भी बहुत सारे बचे हुए थे और थे असुर पशु सब थे, लेकिन जब इस आज के सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी के इस कल्प का सृष्टि में फर्स्ट एंटिटी ब्रह्मा है। तो लक्ष्मी जी गर्भसाय विष्णु के चरण में बैठी हुई थी, बिना लक्ष्मी की सहायता से भगवान अपने बेटा पैदा किए। यस, तो अब बेटा है उनका, पिता का कर्तव्य होता है, नीति शास्त्र कहता है कि
पुत्र अगर मूर्ख हो जाता है तो ये दोष किसका हो जानते हैं? पिता का है। बेटा की संतान अगर मूर्ख हुआ उसका दोष नहीं मां के दोष नहीं, और किसे दे? वो दोष पापा का है, पिता का। अगर बेशर्म हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, असभ्य हो गया तो ये दोष किसका? मां का है। अगर गरीब हो गया, खाने पीने के नहीं है तो ये दोष किसका? ये खुद का है। नहीं, ये खुद का है, उस लड़का का है, माता पिता का दोष नहीं है, उनका है। ये ध्यान रखना, जितने सब गृहस्थ हैं किसका है ना। तो यहां भगवान साक्षात पिता है, और उनके लड़का पहला हुआ है सृष्टि के फर्स्ट एंटिटी। अगर वो अनपढ़ हो जाए, पढ़ा लिखा ना हो, तो तब तो कोई स्कूल भी नहीं था, ना खाता कलम पेन, ना टीचर, कोई नहीं थे, फर्स्ट तो एक ही वही थे। तो कहां से पढ़ाए, कहां से किताब लाए, ट्यूशन टीचर कहां से लाए, और स्कूल कहां है, कुछ है ही नहीं व्यवस्था, कैसे पढ़े? अगर नहीं पढ़ेंगे तो अनपढ़ हो जाएगा, तो पापा का दोष होगा, पिता का दोष होगा। तो पिताजी ने अपने बेटे को पढ़ाने का तरीका क्या करते हैं? आजकल ऐसे कोई कर सोच भी नहीं सकते। ये भगवान का स्टाइल ऑफ एजुकेशन, क्या एजुकेशन है आजकल एजुकेशन करते हैं। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पहले फीस भरो, भारत भूत प्रेत गवार कुछ बनो फर्क नहीं, पहले पैसा दो, हाँ, फिर बाद में करके जाओ, जो बन करके फीस देकर पहले जाओ, नहीं दो तो पैसा नहीं दो तो पहले अग्रीमेंट साइन करा लेते, केस करेंगे, पैसा क्यों नहीं दिया, तुम भाड़ में जो करो। ये हमारे एजुकेशन की व्यवस्था। और एजुकेशन खुद स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं, प्राइवेटली फेरे अलग से पढ़ाते, पैसा लेकर के फेरे अलग से। तो लेकिन यहां भगवान अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं इस श्लोक में कहते हैं कि उनकी कृपा से मुझे सृष्टि के ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि और कोई टीचर, ट्यूशन टीचर कोई नहीं थे, व्यवस्था कुछ नहीं था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरयः, सीधा डाउनलोड कर दिए हार्ड डिस्क में। लो, आप लोग तो डाउनलोड करते हैं, एक कार्ड लगाना पड़ता ना जैक, यहां से कनेक्शन यहां तक देते हैं, बोलते नहीं यहां फिट नहीं बैठता है, थोड़ा और उसके जैक लाओ उसके साइज का, लगाते हैं, फिर लगाने पर भी करंट नेटवर्क ना हो तब भी नहीं होगा, केवल तार होने से थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा ना, तभी कोई तार था, कनेक्शन वायर था, ना नेटवर्क था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना कोई लैपटॉप था, ना कोई स्मार्टफोन था। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वैदिक ज्ञान को डाउनलोड कर दिए उनकी इच्छा से। आजकल अगर ऐसे एजुकेशन सिस्टम हो जाए कि टीचर स्टूडेंट के हृदय में सीधा डाउनलोड कर दे, तो कहा कि कॉलेज फीस एग्जाम कहा कि फिर सीधा हृदय में आ गया, याद करना लिखना पढ़ना पटे सब कहे कि होगा। सीधा ये प्रोसेस एक्चुअली भगवान का अभी तक इस दुनिया वाले ने प्राप्त नहीं कर पाया, शायद वैज्ञानिक भगवान ने किए, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ये हुआ है, इस प्रकार के एजुकेशन के सिस्टम भगवान ने किए, लेकिन हम लोग कभी उसको पहुंच नहीं पाए यहां तक, नहीं तो फिर स्कूल कॉलेज एजुकेशन बिजनेस खत्म हो जाता, सादे सीधा सीधा हृदय में आ जाता और डाउनलोड हो जाता, खत्म। और क्या, इतने सारे याद करना लिखना पढ़ना फिर भूल जाना, ये सब क्या, स्कूल जाना, ये सब करना सीधा। तो उनके कृपा से, गोविंद की कृपा से उनको सृष्टि शक्ति प्राप्त होता है। तो वही ब्रह्मा जी ने स्वीकार करते हैं कि वही वास्तविक मूल भगवान है, उन्हीं के ज्योति है ब्रह्मा, और उन्हीं के जो लोकलाइज स्थिति है वो है परमात्मा, और वही साक्षात स्वरूप भगवान है। तो इसी को प्रभुपाद जी ने समझाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि सूर्य अन्य ग्रह से बहुत दूर स्थित है, किंतु उसकी किरणें उन सब का भरण पोषण करती है। सूर्य आकाश में एक ही सूर्य है, आप पूरे संसार में कहीं भी जाओ बोलेंगे हमारी पर तो है, एक ही सूर्य है, एक ही लाइट है। अभी देखे छोटा सा कमरा है 60x70 का, कितने लाइट फिट हुए, फिर भी एक बड़ा फोक्स लाइट लगाया क्यों कम पड़ता है फिर भी, लेकिन भगवान की व्यवस्था था एक बल्ब टांग दिया है बस पूरे संसार बल्ब का हिल जाए तो हमारा टेम्परेचर अप डाउन हो जाए। तो इतने इससे प्रैक्टिकल क्या फिटिंग किए किस पोजीशन में इसे फिटिंग किए हैं कि पूरे संसार में सब जागा है, सभी बोलते हैं कि हमारे सबके भरण पोषण करती है। निसंदेह सूर्य समुच्चय ब्रह्मांड के ऊपर अपनी उष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है, ये तो निश्चित रूप से जानते हैं सभी। भगवान गीता में समझाते हैं इस बात को कि भगवान बोलते हैं कि परमात्मा रूप में आप सभी में है, सर्वत्र विराजित सर्व सभी शरीर में ना, हाँ सर्व कैसे हो गया आप तो एक है, अनंत कोटि जीव है अनंत कोटि प्राणी है आप एक है ये कैसे सब में आ गए। तो भगवान बोलते भैया जसा जथा आकाश स्थितो रवि, आकाश में सूर्य भी तो एक है ना, और करोड़ों मणि स्फटिक मणि रख दो सब में सूर्य दिखेगा कि नहीं, सबको भरम भरोसा करता है कि नहीं, कैसे हो गया ये तो एक है ऐसे ही है। ये भगवान के लॉजिक ये उदाहरण दिए, जैसे सूर्य आकाश में एक होकर के अनंत अनंत कोटि में अपने को प्रकाश करती है, ठीक भगवान गोविंद एक होते हुए भी आपने गोलोक स्थित गोलोक नाम निज धाम नितले च तस्य, आपने धाम में गोलोक में रहते हुए भी सर्वव्यापी है, सर्व हृदय के अंतर्गत परमात्मा रूप में रहते हैं, सभी के हृदय में अंतर्जामी रूप में रहते हैं। इसी प्रकार सूर्य रश्मि गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी उष्मा तथा प्रकाश विस्तार करते हैं, सूर्य की उष्मा तथा उनका प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के जो किरण उसका जो गर्माहट जैसे सूर्य ही है, तो इस प्रकार भगवान के जो उनके ब्रह्मा और परमात्मा ही भगवान ही है, ये भगवान की प्रकाश है। अतएव सर्वव्यापी ब्रह्मा सर्वव्यापी गोविंद है, कि हम एक दुनिया वाले जो ब्रह्म ब्रह्म करते हैं हम जानते हैं ब्रह्म यहां तक उनके पहुंचे, उनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर नहीं है, लेकिन वो असली जो मूल है स्वरूप ब्रह्म के परमात्मा के मूल सर्वव्यापी श्री गोविंद है, ये ब्रह्मा जी के साक्षात उक्ति है, ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद के। तो गोविंद वास्तविक सृष्टि के वास्तविक सृष्टिकर्ता वही है, ब्रह्मा जी को ही प्रकट किया है सर्ग, नहीं तो ब्रह्मा जी ने आकर के कैसे सृष्टि करते, मैटेरियल कहां से मिलता, मैटेरियल कहां से मिलता। आजकल जितने बड़े बड़े बिल्डिंग फ्लैट सब यहां बनता रहता है, जो बनाते हैं ठेकेदार वो बोलते हैं हमने बनाया ये मेरी बनाया हुआ बिल्डिंग है, इंजीनियर बोलता है मेरा है, आर्किटेक्ट बोलता है मेरा है, जो पास किया बोलता है मेरा है, और घर के मालिक का क्या कहेगा, ये मेरा कहेगा कि नहीं। लेकिन किसी को भी पूछो भैया आप सभी तो अपना अपना कहते हैं, ये ईट आपने बनाया था, मिट्टी आपने बनाया था, पानी आपने बनाया था, लाइट आपने बनाया था, कौन सा चीज आप बनाया था बताओ, अपना अपना करते हैं, किसी ने किसी चीज का मालिक नहीं है, किसी चीज को किसने नहीं बनाया, रॉ मटेरियल लाए इकट्ठा करके जोड़ जाड़ कर अपना नाम लेते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कि जब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी की जो सृष्टि किया गया सृष्टिकर्ता के रूप में, ब्रह्मा जी ने नाभि कमल से गर्भाशय विष्णु के नाभि से प्रकट होकर के चारों तरफ देखे, चार मुंह हो गया, चारों दिशा कुछ नहीं है, हवा चलता है और पानी ही पानी, गर्भसागर में जल है, कुछ नहीं पता, बोले मैं आया कहां से, कमल है कमल आया कहां से। तो सबसे पहले रिसर्च करने के लिए सोचे उन्होंने, और रिसर्च करने के लिए मेरा उद्गम कहां है, उन्होंने घुसे कमल के अंदर स्टेम के अंदर गए, बोलते हैं कई हजारों साल उनके कैलकुलेशन के अनुसार जा करके हाथ धो करके वापस आए, बोले कुछ पता नहीं चला, हताश कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे साइंटिस्ट कहां कहेंगे, सपोज सपोज से करके रह जाएंगे, ब्रह्मा जी ने नहीं कर पाए, उठ करके चुप बैठे बोले कुछ नहीं पता चला। तो वो ये शब्द सुनाई पड़ा तप, और तपस्या किए, तपस्या किए तो भगवान यही सिखाते हैं कि तपस्या में सृष्टि करता हूं, तपस्या से मेंटेन करता हूं, तपस्या से मेरे से लीन करता हूं, सबके मूल तप एव परम शक्ति, वही तपस्या शक्ति और ब्रह्मा जी ने तप किए, बड़ी लंबी समय तक भगवान ने प्रसन्न हुए, आकर के आपने की दर्शन दिए, हाथ मिलाए ब्रह्मा जी से, हैंडशेक किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर के आपने लोक को दर्शन कराए, आपने गोलोक धाम को दर्शन कराए, स्वयं मिले। तो ब्रह्मा जी ने अब देख करके पापा को उनकी स्तुति किए। एक तो भागवत में ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी का बुद्धि ठिकाना आ गया, उन्हें स्तुति किए। एक बार जो भागवत के दूसरे अध्याय में जब ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए ज्ञान भगवान देते हैं, तभी भगवान के सामने जब ब्रह्मा के सामने भगवान प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से प्रार्थना करते हैं, बोले हे प्रभु, अब तो मुझे समझ में आ रहा है आप कितने महान कितने बड़े, मैं तो सोच नहीं पाया था, लेकिन आप मुझे इस सृष्टि कार्य में सब लगाते हैं, सारे मटेरियल्स दे दिए, मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाने के बाद कभी मेरे मन में ये गलत धारणा तो नहीं आ जाएगा कि मैंने बनाया करके, जैसे हम सभी करते हैं, कुछ नहीं किए लेकिन झूठ मूठ में ठिका लेते हैं कि हम बनाए, मेरा है मेरा है करके। ब्रह्मा जी को डर था, ब्रह्मा जी सृजन करने से पहले ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के पूछे, बोले प्रभु ये जो मैं देख रहा हूं स्वभाव सभी का, मेरा भी यही स्वभाव है, आपके कृपा से मटेरियल आपका है, शक्ति आपका है, मिलाने का तरीका आपने, डिजाइन आपका है, सब कुछ आपका है, मैं केवल मिलाकर कर दूं, बोले मैंने बनाया, बोले ये अहंकार मेरे आ जाएगा और इस अहंकार के कारण मेरा पतन भी हो सकता, क्योंकि मैं है ही नहीं झुटमुट में, असत्य रे सत्य करी मानी, ये हो सकता है, मैं इसलिए एडवांस प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कीजिए कि मेरे अंदर ये अहंकार झूठा अहंकार न आए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना से ये पता चलता है, ये समग्र संसार में जितने बद्ध जीव है उनका जो बद्ध अवस्था है, उनका जो दुख है, उनका जो समस्या है, उनका जो सारे जड़ है, वो है झूठा अभिमान झूठा अहंकार, फल सी को और कुछ नहीं, इसी को ब्रह्मा जी डरते थे, बोले ये चक्कर फंस जाऊंगा, भगवान खुश हुए, बोले तो सही चीज पकड़ा है, इसी के कारण झूठा अहंकार के कारण सारे कष्ट भोगते हैं, ये जेल इसलिए बनाया गया इससे निकलने के लिए, झूठा अभिमान से निकल जाएं। क्या झूठा अभिमान, हम कहीं भी जाते हैं अपना आईडी प्रूफ दिखाते हैं, आधार कार्ड, इंडिया में आधार कार्ड चलता है, विदेश में आधार कार्ड भी नहीं चलता, पासपोर्ट नहीं तो वोटर आईडी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होगा क्या आईडी दिखाते हैं, अरे आईडी किसका है ना, नहीं हम जो सचमुच हम है आत्मा, उसका फोटो खींचने वाला कैमरा कभी तक आया है, कोई फोटो खींच सकता है, कोई हाई पावरफुल लेंस वाला कैमरा हो आत्मा का फोटो खींच सकता है, हम तो आत्मा है, शरीरी है, और ये तो शरीर है, लेकिन हम शरीर केवल कवर का फोटो लेकर के बोलते हैं मैं वो हूं, यही असत्य रे सत्य करिमानी, यही झूठा पहचान है, तो ही हमारा अज्ञान के कारण, प्रभुपाद कहते हैं सारे दुख के जड़ है अज्ञान, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, तो इग्नोरेंस सही है कि हमको बताने हम है क्या, तो हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर कहे आमी कृष्ण दास यही विश्वास कर ले आर दुख नाय, ये सही आईडी है, परफेक्ट हमारा जो परिचय है कि हम कृष्ण के दास है बस, वही कृष्ण ही गौर है, इसी को प्रमाण करते हैं पूरे सच्चन चेतन चरितामृत, यही उनका उद्देश्य है, जय कृष्ण सही गौर, गौर ही गोविंद है, वही गोविंद है गौर होकर आया है, तो आमी गौरदास आमी कृष्ण दास एक ही बात है, उसी को बताने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किए कि आप कृपा करो ताकि मेरे अंदर ये झूठा अभिमान ना आए, तो भगवान ने उनको अनुग्रह किए, जावान अहम जथा भावम जद्रूप गुण गुण कर्म कह तथैव तत्त्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात, मद अनुग्रहात, ये सृष्टि के शुरुआत होने से पहले स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और उनके सृष्टिकर्ता श्री भगवान गर्भसाई विष्णु के अंदर वार्तालाप होते हैं, और वो कैसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान स्वयं अपने सिंह से मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से, यही से मत समझो तू कुछ अपना बलबत्ती लगा करके पढ़ लिख लिया, समझ लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया, ये सब झूठा है। अस्तुते मद अनुग्रहात, मैं आपको बोल दूं फिर भी तेरा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं अनुग्रह करूं तब आपसे हो जाएगा ज्ञान। तो इसलिए भगवान बोले मैं अनुग्रह कर रहा हूं आपके ऊपर, अस्तुते मेरा जैसे रूप भाव गुण जावान हम जथा भाव जद रूप गुण कर्म का सब, तेरे ये सारे डिटेल ज्ञान आपको हो जाए। कैसे हो जाए? न मेरे कृपा से हो जाए। इसी को ब्रह्मा आज अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं, ठोक बजाकर बोलते हैं जहारा कृपारे मोरा है सृष्टि शक्ति, ये कोई मेरा पावर नहीं है। मैं चार मुंह लगाकर खूब पढ़ा, आठ आंख है, इतने हाथ, इतने बड़े, इतने सब हाईटेक में पढ़ा मैंने। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं की कृपा से ही मुझे ये शक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान भी कहे अस्तुते मदनुग्रहात, ब्रह्मा जी स्वयं, दोनों टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्सेप्ट करते हैं इस बात। टीचर बोले अस्तुते मदनुग्रहात, स्टूडेंट बोलता है जहार कृपा रे मोरा है सृष्टि शक्ति, आपके कृपा से ही हो। और उनके कृपा से सृष्टि शक्ति को प्राप्त करके सृष्टि बनाने के बाद तो उन्होंने उनको स्तुति करते हैं। ये स्तुति की तो हम दुनिया वाले को पता ही नहीं था, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष दया है। उन्होंने दक्षिण भारत भ्रमण में गए और जाकर के दक्षिण भारत में केरला में एक प्रसिद्ध मंदिर है आदि के सब, उस मंदिर में ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति ब्रह्म संहिता उसी का एक पाठ, वो तो कितने पुराना, कहां मिटमाट गया था, एक पाठ था, उसको जब सुने किसी ने, ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे थे, महाप्रभु बोले ये तो बात है, महाप्रभु सर्वअंतर्यामी है, सर्वज्ञ श्रीमन सब जानते हैं, इसलिए वहीं पर गए। बोले यहां पर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसको तभी जिरक्स भी था नहीं, फोटो प्रिंटिंग मशीन भी था नहीं, और पेन पेपर भी नहीं था, कैसे कॉपी किए होंगे बताओ। हम लोग बोले कॉपी कर लो, मेरे से नहीं होगा, यहाँ क्या कौन मशीन, फोटो प्रिंट मशीन नहीं है तो क्या करो, कॉपी नहीं हो सकता, छोड़ो यार। लेकिन भगवान ऐसे नहीं किए, आपने श्रीहस्त कमल में उसको कोई पेन और कांटा लेकर के लिखे होंगे, जो ब्रह्म संहिता आज हमको प्राप्त है, जो पढ़ रहे हैं वो याद करके अभिषेक में गाकर हेम में ब्रह्म संहिता पढ़ लेता हूं। ये ब्रह्म संहिता को श्री गौरांग महाप्रभु ने कांटे और पत्तल में लिख करके वहां से ला करके हम लोग को दिए वधजीव को। अब इसी संप्रदाय का विशेष ज्ञान है ब्रह्म संहिता, बाकी कोई संप्रदाय है नहीं, गौरांग महाप्रभु उनके संप्रदाय में स्तुति है, ब्रह्मा जी के संहिता, ब्रह्मा जी की जो स्तुति और बाकी किसी के पास पहुंची नहीं है, नष्ट हो चुका था, नष्ट से केवल इसी पाठ को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लाए और उनके कृपा से आज हम लोग के सामने है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति तो कितने बड़ा होगा, उसमें से एक पाठ जो हमारे लायक है तो उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए, उसका मतलब चैतन्य महाप्रभु दिए, चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं, उन्हीं की स्तुति है ब्रह्मा जी ने किए, तो चैतन्य महाप्रभु इसी को देख करे के ये हमको इनडायरेक्टली सिखाते हैं कि अरे जीव तू केवल ये ब्रह्मा जी तेरे बाप दादा परदादा तुम्हारे सबसे ऊपर दी नंबर वन जो है वो मेरे लिए जो कहा उसको सुन लो, तेरा काम बन जाए, इतने ही तुझे चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, इतने ही चाहिए। ब्रह्मा जी के जो चार श्लोक सिखाए भागवत में, अंत में कहे तुझे बस इतना ही, सब पूछते हैं जितने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इतने को पूछते हैं, इतने ही जानने के लायक है बस, और कुछ नहीं है, यही केवल जानने योग्य, पूछने योग्य, समझने योग्य है, इतना ही बात है। वेदेश अहम एव विद्यो, सारे वेद वेदांत में मैं ही तो जानने योग्य हूं, और किसको जानेंगे, क्या जानेंगे सब करके, तो इसी बात को ये कहते हैं। तो वो तो बता दिए, तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति किए डायरेक्ट प्रभु को देख करके सुन करके समझ करके और उनके कृपा से अनुग्रहित हो करके ये जो स्तुति किए हैं ब्रह्मा स्तुति, इसमें से एक टेक्स्ट हम आज चर्चा करेंगे, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तब हम आकलन कर लेंगे कि हम कितने गोविंद को कैजुअली लेते हैं। हाँ गोविंद जी होया, मैं गया था जयपुर, गया था मैंने गोविंद जी, मैंने देखा जैसे पकेट में लेकर घूम रहे हैं, घूम ही रहे हैं लेकर के मोबाइल में इसमें इसमें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जस्से क निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान सहि अजस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि, मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूं, पूजा करता हूं। कैसे आदि पुरुष है? आदि पुरुष है, सबसे पहले पुरुष है। कैसे है ना, जस्य एक निश्वसित काल, उसको समझने के प्रयास है। आप लोग सब निश्वास तो लेते हैं, निश्वास समझते ना, एक निश्वास एक प्रश्वास। हमारा जो नाक है उसमें जो दो होल है उसमें हवा लेते हैं और हवा छोड़ते हैं, निश्वास कहते हैं निष्कासन होना और प्रश्वास बोलते हैं प्रवेश करना। जब हवा अंदर लेते हैं इनहेलिंग उसको बोलते हैं प्रश्वास, हवा प्रवेश किया हमारा अंदर, फिर निष्कासन करते हैं लेकर के रख नहीं सकते हैं, छोड़ते हैं फिर उसको, वो बोलते हैं निश्वास, श्वास छोड़ दिए, प्रश्वास निश्वास, प्रवेश करना निष्कासित करना, एग्जिट एंट्रेंस है ना। नहीं तो एग्जिट जो है एक्सेल, जो हम अपना शरीर से वायु को जो नाक के होल से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं निश्वास। तो हम जितने बैठे हैं सभी निश्वास तो छोड़ते ही है ना। नहीं अब बोलते निश्वासित काल, निश्वासित काल किसे कहते हैं? जैसे आप एक निश्वास ले लिए तब बंद करके रखो, रामदेव बाबा सिखाते ना कपाल भाती, कपाल भरते तो बार बार केवल निकालते हैं, निकालना नहीं, उसको क्या बोलते रहे योगाचार्य सो गया, अनुलोम विलोम नहीं, निकाल करके फिर बंद कर रखो, फिर लेना नहीं है। कुंभक थोड़ी है, कुंभक लेकर अंदर रखना, रेचक बाहर निकालना, बाहर निकाल कर फिर रखना उसको, फिर ना लेना। पूरा कैसे हो सकता है? भस्त्रिका प्राणायाम, करेक्ट, भस्त्रिका प्राणायाम, लेना छोड़ना नहीं हो तो वो भी जोर जोर से लेना छोड़ना क्या, वो भी नहीं है, ये भी गलत बोला। नाड़ी शोधन में करते हैं उसको, बाहर निश्वास को निकाल करके रोक करके रखना। कितने समय रोक करके रख सकते हैं? ये समय आपका निश्वसित काल होगा, नाड़ी शोधन व्यायाम प्राणायाम आता है ना। निकालो फुल, जितने आप चाहते हैं पूरा पेट से अंदर से निकाल करके करके पूरा निकालो, पूरा खाली कर निकाल दो और फिर रोको, नहीं लेना है ना, नहीं लेना। तो इस प्रकार में बाहर से हवा को रोक करके रखना, रेचक मतलब निकालना फिर रोकना, पूरक मतलब प्रवेश करना, कुंभक मतलब पेट में रखना, ये रेचक करके फिर बाहर में रखना हवा को, लेना नहीं है। ये है निश्वसित काल, समझने के लिए प्रयास करो, ये सब करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। रेचक तो निकलना ही केवल है, हाँ तो रोक लो फिर वो क्या होगा, रेचक थोड़ी होगा। रेचक क्रिया बोलते हैं निकालना, पूरक बोलते हैं प्रवेश करना, कुंभक बोलते हैं अंदर रखना, निकाल करके बाहर रखना, ये शोधन क्रिया, ये निश्वसित काल। तो निश्वास सारे बाहर निकाल करके अंदर रखो। आप और हम बहुत योग प्रैक्टिस करते हैं, कोई अगर करते भी होंगे, कितने समय आपका निश्वासित काल हो सकता है थोड़ा ट्रायल करके देखिए। करुणा के समय ये दिया जाता था प्रैक्टिस, जिनका निश्वासित काल ज्यादा है ना उसको करुणा नहीं हो सकता। हाँ निश्वास निकाल करके देखो कितने समय रोक करके रख सकते हैं, 20 मिनट। माय गॉड, 20 मिनट तो राम नाम सत्य होकर के संस्कार भी हो जाएगा, 20 मिनट। एक मिनट हो पाना हाल खराब हो जाए। एक मिनट अगर बड़े बड़े भारी भारी होंगे एक दो मिनट तक कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, एक मिनट तो बहुत भारी हो जाता है। ये हमारे निश्वसित काल, एक मिनट कोई भारी जोग बहुत एक्सपर्टी से 2 मिनट तक कर सकते हैं, 2 मिनट का हम निश्वसित काल। अब ब्रह्मा जी कहते हैं किनका, बोलते हैं हमारे गोविंद जी का एक निश्वसित काल, मतलब एक बार सांस निकाल देते हैं फिर नहीं लेते हैं, कितने समय बाहर रखते हो। जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य, उसी के अनुसार वही टाइम में बाहर सांस है, अभी लिए नहीं, रेचक में रहे, अभी पूरक नहीं हुआ है, इस समय में बोलते मेरे जन्म होता है, ब्रह्मांड का भी प्रकट होता है, इसी समय को अवलंबन करके जस्येक निश्वसित काल मथावल जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। बोलते हैं मैं जगदंड नाथ, मेरा भी पैदाइश होता है और उस लोम कुप से अनेक अनेक ब्रह्मांड भी प्रकट हो जाते हैं। यही अभिरेचक चल रहा है उसमें। अब कब तक चलता है, कब सांस लेंगे? बोलते हैं कि जब मेरा परमायु पूरा हो जाए। मेरा परमायु पूरा हो जाएगा तब उनका निश्वासित काल पूरा होगा, तब फिर प्रश्वास लेंगे। अब ब्रह्मा जी के परमायु पता है आप लोग को कितना है? एक निश्वसित काल इनका है जिनका, वो ब्रह्मा जी के परमायु के बराबर है। पूरे ब्रह्मांड के महाप्रलय हो जाता है एक निश्वास काल में। ब्रह्मा जी के परमायु कितना है अब काउंट कीजिए। हम लोग का परमायु 100 साल का होता है। 100 साल, 1 साल 365 दिन का होता है, 1 दिन 24 घंटा का होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन जान लो, बाकी फिर कैलकुलेट करना 1 साल फिर 100 साल का। ब्रह्मा जी का भी 100 साल आयु होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को 1 कल्प कहते हैं। 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 1 कल्प। 1 डे मीन्स 24 घंटा, 12 घंटा नहीं, हम तो दिन को 12 घंटा मानते हैं। तो 1 कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन वो होता है 1000 चतुर्युग, मतलब ओनली डे टाइम, नाइट नहीं है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक 1000 चतुर्युग पूरा हो जाएगा। अब चतुर्युग क्या है? जैसे अभी कलयुग चल रहा है, उसका एक्सपायरी डेट है, उसका परमायु है कलयुग का 4,32,000 साल। कलयुग के ड्यूरेशन है 4 लाख, उसके डबल करो द्वापर होगा 8,64,000, उसके 3 गुना करो त्रेता होगा, उसके 4 गुना करो तो सत्य होगा। तो अब को चारों को मिला दो, चारों युग के टाइम को मिला दो, लगभग 43,23,000, 43,20,000 साल, ये एक चतुर्युग होता है। तो इसमें 1000 गुना करो, ये होगा 43,20,000 इंटू 1000, ये होगा ब्रह्मा जी के दिन के समय 12 घंटा। फिर 24 घंटा और डबल करो उसका, 12 घंटा रात का भी है, इंटू 2, ये होगा 1 कल्प, मतलब 1 दिन। फिर 1 हफ्ता करो, 1 महीना करो, फिर 12 महीना करो, 1 साल हो गया, फिर 100 साल करो, कंप्यूटर फेल, हो ही नहीं सकता उसमें। कैलकुलेशन कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। तो ये उनका केवल निश्वास के समय है, सांस निकाल करके है, इसी में से सब दुनिया हो गया। हम लोग को कितने बार मर जाएंगे प्रकट होकर हिसाब ही नहीं, अनंत अनंत बार। ब्रह्मा जी के परमायु पूरा हो जाता है जिसके केवल अभी सांस लिए नहीं, इतने में ओ को उन्हें ब्रह्मा जी जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। वो कौन है जिसका निश्वसित काल इतनी लंबा है? ब्रह्मा जी के परमायु तक कौन है? वो बोलते हैं कि वो गोविंद नहीं है, महाविष्णु। विष्णु और महान, वही महाविष्णु है। और वो महाविष्णु कौन है? महान विष्णु और महान स यह जस्य कला, एक विशेष कला है। किनका? गोविंद का। गोविंद के कला कहते हैं अंश का अंश को। आपके पाठ है और ये पाठ के भी और एक पाठ हो तब उसको कला कहा जाएगा। तो महाविष्णु जिनके एक निश्वास काल ब्रह्मा जी के पूरे परमायु है, तो वो बोलते हैं वो महाविष्णु जो महान विष्णु है वो मेरे हमारे प्रभु गोविंद के अंश है। उनके अंश भी नहीं है, उनके पाठ के पाठ है, कला विशेष। तो अभी गणन अंदाज लगा लो गोविंद कितने बड़े होंगे, उनका क्या ड्यूरेशन होगा, उनके सांस कैसे होगा, क्या होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते मैं नहीं कह सकता। जानंतु एव जानंतु, बोले कोई बोलता है कि मैं जानता हूं, बोले मूर्ख तू जान दो, भले तू बोलता है मूर्ख आवाज करते रहो, गधा की तरह रेंकते रहो। बोले मैं कहता हूं ना मेरे मन ना मेरा बुद्धि ना मेरे वाणी से किसी प्रकार से मैं नहीं जान सकता हूं। सरेंडर, हाथ उठा दिए। केवल तम अहं भजामी, मैं केवल उनको पूजन करता हूं, भजन करता हूं, दैट्स इट। बाकी उनको समझने के लिए है ही नहीं, वांग मानस गोत्र, मैं कर नहीं सकता, मन बुद्धि वाणी से किसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता, ये ब्रह्मा जी घोषणा करते हैं और हम क्या जानेंगे उनको। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे ये लोग कोई कैसे जानेंगे। 10th chapter भगवद गीता में भगवान बोले कि ऋषि ये देवता ये मुझे नहीं जान सकते, सवाल नहीं मुझे नहीं जान सकते, लेकिन बड़े बड़े महान महान ऋषि बड़े बड़े देवता आपको नहीं जान सकते ना, नहीं जान सकते। बोले क्यों, हम लोग नहीं है वो लोग भाई, ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण चंद्र बड़े बड़े महान महान ऋषि ये सब। बोले ना क्यों, हम आदि ही देवानाम। बोले मैं ही उनके बाप हूं। कोई बेटा अगर कहेगा कि मैंने पिताजी के शादी में बारात में गया था और फिस्ट में ये खाया, आप विश्वास करेंगे? बोलेंगे पागल, तू तेरे पापा का शादी में कैसे फिस्ट में खाया था, ये विश्वास योग्य नहीं है। तो भगवान यही उदाहरण देते हैं, बोले देवता ऋषि अगर कहेंगे मैं गोविंद को जानता हूं, विश्वास योग्य ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके बाप हूं, तो मुझे कैसे जानेंगे, हम आदिर ही देवाना, तो इसलिए मुझे नहीं जान सकते, सवाल ही नहीं है। तो अर्जुन बोला आपको कोई नहीं जान सकता, फिर आप ही बता दीजिए खुद आपके बारे में। भगवान फिर हाथ जोड़ के बोले अर्जुन मैं भी नहीं बता सकता हूं। बोले मैं बताऊंगा लेकिन पूरा नहीं बता सकता, क्यों? बोले मैं अनंत हूं, मैं अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं है, मैं कैसे उसको बोल दूं, मैं भी नहीं जिसको बोल सकता हूं वो मैं हूं, मैं कैसा हूं ना मैं भी खुद नहीं बता सकता मैं कितने बड़ा। ओ हे गोविंद कितने महान है, कितने बड़े हैं। और ओ हम जैसे जीव की कृपा करने के लिए इतने आतुर रहते हैं, बोलते हैं कि केवल मन मना भव बेटा मद भक्त मद याजी, मुझे करो मेरे भक्त बन जाओ, फिर देखो मैं आपके लिए क्या नहीं करता हूं, क्या नहीं करता हूं उनके भक्ति करने से। तो ही चैतन्य चरितामृत का संपूर्ण विषय वस्तु है, वही श्री गौरांग महाप्रभु जो साक्षात श्री गोविंद स्वयं है, जिनको आप ब्रह्म करके मानो, परमात्मा करके मानो, भगवान करके मानो, सब मूल स्वरूप में वही है, वही एक भक्त बन करके आ रह करके शरणागति सिखाते हैं हमको, सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण, भक्तों के भक्ति के प्राण स्वरूप इस शरणागति धर्म को सिखाने के लिए वही श्री गोविंद स्वयं श्री गौरांग बन करके आए हैं, यही इस सब्जेक्ट मैटर है। हरे कृष्ण।